राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 नवंबर 1991 को साय लगभग 4:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना शर्बी का निर्मित हुआ राम।
देखो, खास बात है कि क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति के हैं। प्रकृति से अतीत में ना क्रिया है ना पदार्थ है। ये चीज वस्तु जितनी दिखती है, जितने शरीर दिखते हैं, सब पदार्थ है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और इनसे उत्पन्न होने वाले जितनी सृष्टि जितनी वस्तु है, उत्पन्न और नष्ट होती जितनी, ये सब वस्तुएं हैं। और उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना, मिटना, ये क्रिया है। ये क्रिया, ये वस्तु और ये क्रिया। मन की क्रिया होती है, मन भी वस्तु है, बुद्धि भी एक वस्तु है, इंद्रिय भी एक वस्तु है, प्राण भी एक वस्तु है, और मैंने होने वाली क्रिया एक क्रिया है। तो क्रिया और वस्तु मात्र प्रकृति का कार्य है। ये अनित्य है, ये कभी नित्य रहने वाला नहीं। कोई भी कितना ही उद्योग कर रहे, इनको अपने साथ रख नहीं सकता, कोई नहीं रख सकता, कभी नहीं रख सकता। ये अपने साथ रहने वाली है ही नहीं। वस्तुएं सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, और क्रिया का आरंभ और अंत होने वाला है। कोई भी क्रिया वो आरंभ होता है और अंत होता है, और वस्तु की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, जन्म होता है, मरण होता है, और स्वर्ग होता है, प्रलय होता है, सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रलय होती है, और महासर्ग होता है, महाप्रलय होता है। जन्म मरना क्रिया हुई, स्वर्ग और प्रलय क्रिया हुई, महासर्ग और महाप्रलय क्रिया हुई। ब्रह्मा जब उत्पन्न होते हैं तो वो महासर्ग होता है, और ब्रह्मा जब लीन हो जाते हैं तो महाप्रलय होता है, और ब्रह्मा जब जगते हैं नींद से तो स्वर्ग होता है, और जब सो जाते हैं तो प्रलय होता है। सरगर प्रलय, सरगर प्रलय, सरगर प्रलय, ऐसे होते होते 100 वर्ष की उम्र होती है ब्रह्मा की, तो महाप्रलय होता है। वो 100 वर्षों तक महाप्रलय, फिर महासर्ग। 1000 चतुर्युगी का एक युग होता है, एक चतुर्युगी एक। ऐसे 1000 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग है। युग एक एक 1000, 4000 युग ऐसे ऐसे एक चौकड़ी गिरी जाए तो 1000 युग की चौकड़ी। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है, ये ब्रह्मा का दिन है। वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ऐसे 4 है, ये चतुर्युगी 1000 भी जाएगी ना, तो ब्रह्मा जी का दिन होगा, और इतनी बड़ी रात्रि होगी उनकी। दिन में जग जाते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। तो ये दिन में जगते हैं तब स्वर्ग होता है, सृष्टि उत्पन्न होती है, स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, और जब सो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, सृष्टि बंद हो जाती है। जैसे हम जगते हैं तब तो काम करते हैं, सो जाते हैं तो काम बंद होता है हमारा, तो ब्रह्मा जी का काम बंद हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसे करते करते इन दिनों से एक पक्ष बनता है, एक पक्ष से 2 महीने महीना बनता है, 2 महीनों से एक ऋतु बनती है, 6 ऋतुओं से एक वर्ष बनता है। महीनों की एक राशि वाला 12 महीना हुआ। अब उन दिनों से जो शत्रुयुग का 1000 युग बीते तब उन दिनों से मान 2000 शत्रुयुग का 8 पहर होता है। इन 8 पहरों से दिन बनाओ, रात बनाओ, ऋतु बनाओ, वर्ष बनाओ। 100 वर्षों की उम्र होती है ब्रह्मा जी की, 360 दिन। ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है तब रात होती है, जिनमें आयु पूरी हो जाती है 100 वर्षों की, तो ब्रह्मा लीन हो जाते हैं। तो इतना ही बड़ा रात्रि का मान है। सहस्र युग पर्यंतम आर्य ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है। रात्रि युग सहस्रांताम और युग सहस्र की रात्रि होती है। ये रात्र दिन होते हैं। इन रात्र दिनों से 15 दिन का एक पखवाड़ा, 15 दिन का पखवाड़ा, 2 पखवाड़ों का 1 महीना, ऐसे महीना होता है। ऐसे 12 महीने बीतते, फिर उन वर्षों से 12 महीने में 1 वर्ष और उन वर्षों से 100 वर्षों की उम्र। वह 100 वर्ष पूरा हो जाता तब वो महाप्रलय हो जाता है। फिर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, सृष्टि पैदा होते, महास्वर्ग होता है। जन्मना मरना, स्वर्ग और प्रलय, महास्वर्ग और महाप्रलय। तो ये किनका होता है कि संपूर्ण वस्तुओं का, संपूर्ण जीवों के शरीरों का इनका नाश होता है। और इसमें रहने वाला जो परमात्मा का अंश है इसका नाश नहीं होता, ये नित्य रहता है। सांसारिक पदार्थों में, क्रियाओं में जो प्रियता करता है, ये जन्म मरण का कारण है। क्रिया मीठी लगती है, अच्छी लगती है, और पदार्थ अच्छे लगते हैं, रुपये पैसे चीज वस्तु बेटा पोता धन संपत्ति वैभव घर आदि अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है, ये ही जन्म मरण का कारण है। ये जन्म का कारण हो गया, जन्म होने पर मरना होता ही, मरना हो गया। कारण गुण संगोष्ठी सदा सद योनि धनुष, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण इनमें है। अब इनमें आसक्ति है, प्रियता है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, ये जो चीज है ये जन्म मरण देने वाली चीज है। तो अब गीता में योग का वर्ण आया, अंत में योग शास्त्र श्री कृष्ण संवाद है। योग किसका नाम है? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जति, इंद्रियों के अर्थों में भी आसक्ति न हो और क्रिया में भी आसक्ति न हो, क्रिया और पदार्थ हो। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, इसमें पदार्थ आ गए, और न कर्म सूर्य क्रिया आ गई, इन दोनों में से किसी में आसक्ति नहीं हो और मन का संकल्प भी न हो, सर्व संकल्प सन्यासी, वो योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ होगा, समत्वम योग चले, समता का नाम योग है। यही तेरे तत्सर्गो ये शान सामने स्थित अनुमाना, संसार को यहाँ ही जीवित अवस्था में जीत लिया, जिसका मन साम्यावस्था में हो गया, किसी में राग द्वेष न रहे, जितना राग द्वेष कम होगा उतना सुख होगा, जितना राग द्वेष ज्यादा होता उतना दुख ज्यादा होगा, और सर्वथा राग द्वेष मिट जाए तो फिर सुख दुख मिट जाएगा, साम्यावस्था हो जाएगी मन की। निर्दोष होगी समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, निर्दोष हो जाएगा। निर्दोष होगी। पदार्थ और क्रियाओं का संग छूटने से, इसकी प्रियता छूटने से फिर मुक्त हो जाती। तो ये बात है खास। अब इसमें कोई प्रश्न उठता हो तो बोलो, कोई शंका उठती हो बोलो। अब तीन योग बताए गीता ने, एक कर्म योग, एक भक्ति योग, एक ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में ये विवेक है, मानो जड़ और चेतन का विवेक। ये जड़ चीज है, ये चेतन चीज है, इन दोनों के विवेक की प्रधानता देकर चले ज्ञान मार्ग है। और श्रद्धा विश्वास से भगवान पर आश्रय रखे, भगवान को भरोसा रखे, उसी का चिंतन करे। जो कुछ आफत आवे, सुख आवे, किस भगवान को पुकारे, भगवान को ही। भगवान के सिवाय दूसरा कोई आश्रय नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई सहारा नहीं है, एक भगवान का ही सहारा। ऐसे भगवान से ये है भक्ति मार्ग, इसको भक्ति योग कहते हैं। योग जब हो तब होगा जब भक्ति करते करते समता आ जाएगी, ना राग होगा, ना द्वेष, ना हर्ष, ना सुख, वो भक्ति योग हो गया। ऐसे अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी चारों को भी भक्त कहते हैं, ये भक्ति योग है। परंतु भक्ति, असली भक्ति योग वो होता है कि जिसमें समता आ जाती है, तो इससे भी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति से भी बढ़ करके है तो प्रेम हो जाता है भगवान में, भगवान अपना है, भगवान मीठे लगते हैं। ये जिसका अंश है उसमें चला जाता है। तो सांसारिक कामों से छूट जाते हैं तो सांसारिक काम तो समाप्त हो जाते हैं, परंतु माँ के पास में जाते हैं तो एक बसा आनंद आता है। और सांसारिक धंधों से कामों से छूट जाते हैं वो अलग, पर माँ की गोद में जाते ही दूध मिलता है, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तो वो एक अलग ही चीज मिलती है। इसी तरह से भगवान के साथ मिलते हैं तो भक्ति में उसमें आनंद विलक्षण है, विचित्र आनंद है, वो भक्ति का आनंद है। वो भक्ति का विशेष आनंद हो जाए तो वहां राग द्वेष कुछ हो जाते वो भी मिट जाते हैं। वो भक्त को मिटाना नहीं पड़ता, वो भगवान मिटाते हैं। बालक का लालन पालन करना, इसमें बालक के ऊपर जिम्मेवारी नहीं रहती। ऐसे काम करो तो अपने पर जिम्मेवारी, खाने पीने का प्रबंध करो, कपड़े का प्रबंध करो, रहने का प्रबंध करो, नौकरी का प्रबंध करो, चीज पैसा का प्रबंध करो। और माँ के यहाँ चले जाते हैं तो प्रबंध माँ करती है। तो भगवान के यहाँ शरणों के शरण चले जाए, वो मोटी माँ है, बड़ी माँ, सबसे बड़ी माँ। आप कहते हैं बढ़िया जी, अब बढ़िया जी है वह मौज करो, आनंद करो। तो बड़ी माँ है वो, बढ़िया जी कहते हैं, बीकानेर की भाषा है बढ़िया जी, ये तो बड़ी माँ कहते हैं। और सूर्य की तरफ ले जाओ तो ताई जी कहते हैं, बड़ी माँ को ताई जी कहते हैं। राजपूतों में बीकानेर जोधपुर की तरफ राजपूतों में उसको मीठी माँ कहते हैं। माँ अपने देने वाले माँ अरवा मीठी माँ, बड़ी माँ होती है, बड़ी माँ, मीठी माँ, ताई, ये बड़ी माँ का नाम है। पांडव भी बात अपने करते तो गांधारी को बड़ी माँ कहते, धृतराष्ट्र बड़े है ना, पांडु छोटा था, तो पांडव के बेटा को बड़ी माँ कहते, बड़ी माँ है। इस बात बड़ी माँ है ना, गांधार था ना, क्या नाम, शकुनी, शकुनी मामा था वो। ऐसे मामा तो दुर्योधन का होता है, परंतु बड़ी माँ इनकी हो गई, मामा हो गया इनके, मामा जी हो गया, मामा जी कह जाते। तो माँ का भाई मामा होता है। मैं तो कभी क्या करता हूँ, मामा छोरों को मामा अच्छा बात लगता है, और मामा जी आया, मामा जी आया, तो मामा जी डबल माँ होगी, माँ 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 तो सिंगल माँ होती है, मामा हो गया मामा तो डबल माँ होगी। तो छोरों का आनंद बहुत आता है, मामा जी आया हमारे, मामा जी आया, मामा जी आया, तो मामा जी होते। तो भगवान की भक्ति है वो माँ की वो भी है, उनमें प्यार अधिक है।
महाराज जी, हाँ ज्ञान योग अलग लिया है, यहाँ ज्ञानी को भक्ति के अंतर्गत लिया है, यहाँ ज्ञानी को भक्ति के अंतर्गत लिया है, और उसने ज्ञान योग अलग लिया है, इससे क्या है?
क्या मैं पूरा समझा नहीं?
ज्ञान योग तो अलग लिया
है, अलग है,
और यहाँ भक्ति के अंतर्गत ज्ञानी को लिया है।
वो ज्ञानी लिया है प्रेमी भक्त, जो केवल प्रेमी बने, आर्थिक जिज्ञासु नहीं, ना कोई दुख है, ना कोई जिज्ञासा है, तत्व की जिज्ञासा भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, धन की इच्छा भी नहीं है, कोई भोग की इच्छा भी नहीं है, ऐसा जो प्रेमी भक्त होता है उसका नाम है ज्ञानी। भक्तों में ज्ञानी होता है वो ज्ञानी प्रेमी का नाम है, अनन्य प्रेमी, जिसके कुछ भी आशा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी कामना नहीं, केवल भगवान ही अच्छे लगे, मीठे लगे, और मतलब नहीं किसी से कुछ लेना देना कुछ नहीं, केवल भगवान में लग जाए। अपने साधु संत ने यही अर्थ किया है, ज्ञानी से वर्ष प्रेमी भगत। ये बड़ी शंका होती है हमारे, रही वर्षों तक रही, और अब भी हम कहते हैं, जानते हैं, अपना अर्थ अपने विचार से करते हैं, पर तो इतना ही ठेका नहीं है।
तो आपने जहाँ ज्ञानी लिखा है तो कोश में प्रेमी लिखा है, जहाँ भी ज्ञानी आया वहाँ कोश में प्रेमी
लिखा, तो वो प्रेमी भक्त है। तो भक्तों में चार भक्त होते हैं, एक तो दुख के कारण दुख मिटाने के लिए भगवान का भजन करे, एक उस धन की प्राप्ति के लिए मन की चाहना पूरी करने के लिए भजन करे, और एक तत्व जानने के लिए वो जिज्ञासु होगा, तत्व जानने के लिए भगवान की भक्ति करे, तो ज्ञान योगी को जो मिलेगा वो भी जिज्ञासु मिल जाएगा, वो जिज्ञासु है, और ज्ञानी है उसको कोई जिज्ञासा भी नहीं है, दुख भी नहीं है, और धन की चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं, केवल भगवान ही अच्छा लगे, मीठा लगे प्रेम। अहेतु कुर्वन्ति अहेतु किं भक्ति मित्रं भूत गुरु हरि आत्मा रामास्त मुनय निर्ग्रंथा पुरुक्रमे, आत्मा राम है केवल आत्मा, जैसे सनकादि गए, नारद जी है, ब्रह्मादि गए, नारदाद्या सुखाद्या सनकादया, केवल भगवान से प्रेम करते हैं, कुछ नहीं चाहते, बैकुंठ में जाते हैं तो वही भगवान से कोई चीज की मांगने की है नहीं, सही कुछ नहीं मांगते, केवल भगवान से प्रेम है, भगवान शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो अहेतु की भक्ति होती है, कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, क्योंकि इत्थं भूत गुण हरि, भगवान ही ऐसे ही मन आकर्ष हो जाता है, प्रियता आती है भगवान में, तो ये ज्ञानी भक्त होते हैं। और तत्व जो होते हैं वो तत्व ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होकर के भक्ति हो जाती है, उसमें भी भक्ति हो जाती है, प्रेमी भक्त हो जाते हैं, वह एक हो जाते हैं, जिसके आग्रह रहता है ज्ञान का ज्यादा भक्ति की तरफ परीक्षा रहती है, वे ज्ञान में रहते हैं, और अपना आग्रह नहीं रहता तो भक्त में ज्ञानी भक्त होने पर बोध भी हो जाता है, तत्व ज्ञान हो ही, जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान हो जाता है, इस वर्ष उसका नाम ज्ञानी कहा है। ज्ञानी कहने का तात्पर्य ये है, और भक्त कहने का ये है कि भक्ति मार्ग से चलते हैं, प्रेम करते हैं, इस वर्ष वो ज्ञानी भक्त है। हाँ, एक भक्ति है उसकी, मानो अर्थार्थ की दो भक्ति है, एक तो भगवान की भक्ति है, एक धन चाहता है, अर्थ की दो भक्ति है, एक भक्ति तो दुख दूर करना चाहता है, एक भगवान की भक्ति की भजन करता है, जिज्ञासु की दो भक्ति है, एक भक्ति तत्व चाहता है, ज्ञान चाहता है, एक भगवान का भजन करता है, पर ज्ञानी की एक भक्ति है, एक भक्ति उसको चाहना कुछ नहीं, न आर्थ बना है, न अर्थादी बना है, न ज्ञानी बना, वो जिज्ञासु बना है। इस बात से एक भक्ति प्रिय हुई ज्ञानी अत्यर्थम अहम सचमाम प्रिय, ज्ञानी को मैं अत्यर्थ प्यारा हूँ और वो मेरे को अत्यर्थ प्यारा है, अति प्यारा है। प्रिय हुई ज्ञानी अत्यर्थम अहम सचमाम प्रिय, ज्ञानी तो आत्मे ही मैं बताऊ, वो तो मेरा स्वरूप ही है साक्षात, कुछ नहीं चाहता ठाकुर जी से, वो ही चाहता नहीं। ये बात है तो ये अब इसमें मार्ग है दो, एक मार्ग है विवेक प्रधान, एक है कर्म प्रधान, क्रिया है इसमें। तो क्रिया होती है वहां करण की जरूरत होती है, करण सापेक्ष करण विपेक्ष, अभी पुस्तक सती है ये सब आई है कि नहीं बिक्री में, मंगाओ हमारे पास नमूना मात्र तो आया, नमूना आ गया हमारे पास, उसमें ये कर्ण निपेक्ष सापेक्ष की बात बताई है, देखा है ना? और कोई देख रहे ले जाओ तो ले जाओ नमूना, पर ज्यादा है नहीं हमारे पास, उसका अध्ययन करो। कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, कर्ण निरपेक्ष भी होता है, कर्ण सापेक्ष भी होता है। आजकल तो प्रसिद्ध जो वेदांत है वो कर्ण सापेक्ष ही है, कर्ण निरपेक्ष नहीं समझ सकते हो। एक एक आदमी की जिज्ञासा होती है, एक आदमी के पक्ष होता है, पक्ष होता हो पक्ष ही होता हो, जिसके पक्ष होता है एक पक्ष पकड़ लिया तो कर्म निरपेक्ष को वो समझ नहीं सकते। कर्ण रहित हमारे पुस्तक में साफ लिखा है, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित, ये पुस्तक आपने देखी कि नहीं? वो देखी है,
उपयोग लेना कोई मना नहीं है,
मना नहीं
है, लेकिन उसके द्वारा तत्व की
प्राप्ति हो, हाँ उनके भरोसा नहीं रहना है, उसकी शरणागति नहीं है, स्वतंत्रता है। तो ये बात बहुत गुप्त है, प्राय प्रतिष्ठित नहीं है ये बात, इस बात से बात विवाद होते हैं, वहां लोग मानते नहीं, नहीं मानते हम चुप हो जाते, अच्छी बात भाई ख्याल से।
महाराज जी ये भी मान के चलते हैं कि करने से ही होगा,
हाँ
और आपके सिद्धांत में करना कुछ है ही नहीं,
करना तो प्रकृति में है, प्रकृति अतीत है, जड़ के द्वारा चेतन, असली जवाब है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है, तो कर्म जड़ है कि चेतन है खास एक शब्द इतना ही काफी है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, पर वो नहीं मानते, नहीं मानते हमारे मत मानो, हमारे विवाद करने का मन नहीं रहता है, मानना चाहे कोई, मैं जानना चाहता हूँ तो भी इस बता सकता हूँ, कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष का ही विवेचन को बता सकता हूँ, उस पुस्तक में लिखा भी है, अब पूरी देख लिया आपने,
अच्छा बहुत स्पष्ट है,
आपने देखी पूरी
है,
खूब करो बात, पुस्तक नहीं तो एक दो पुस्तक हम दे सकते भाई, हमारे पास बहुत थोड़ी है, दो तीन है चार है, तो देख लो ले जाओ, हमारे किसी दे दो आओ जो ले जाना तुम्हारे, नहीं तो मंगा लो प्रेस से। ये बात तो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष, तो साधन होता कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष, और सात जो होता है कर्ण रहित, वो कर्ण रहित है, कर्ण नहीं माया रहित है, प्रकृति से रहित है, प्रकृति से अतीत है, गुणातीत है, वो बात है। जय सीताराम सीताराम सीताराम।